सर ये शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए तो बेहतर रहेगा। आपका नाम, आपका किस एरिया में आप स्पेशलाइज्ड हो, आपके कॉलेज का नाम और कौन से कोर्सेज आप पढ़ाते हैं आपके कॉलेज में।
अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार दुबे है और मैं ये छत्तीसगढ़ रायपुर में कोलंबिया कॉलेज है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है। यहाँ पे हमारे पास अभी बीएड का कोर्स है और डीएलएड का कोर्स है।
डीएलएड?
हाँ, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन
ओके,
और बीएड का कोर्स है।
और डीएड भी है? ओके,
हाँ डीएड भी है।
तो
अब बीएड को ही डीएलएड कर दिया गया है।
सॉरी,
दो कोर्स है, बीएड और डीएलएड, ये दो कोर्स है हमारे यहाँ
जी।
और मुझको 14 इयर्स हो गए इस लाइन में। अभी यहाँ पे मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पे हूँ जो कि एक स्टेट्यूट है पंडित रविशंकर शुक्ल का, सेक्शन 28, उसके अंडर मैं सिलेक्टेड हूँ। वहाँ से टीम आती है उनके द्वारा
जी।
और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एमएड है, एमएससी आईटी है, एमएड है, पीएचडी इन एजुकेशन है और यूजीसी नेट मैंने किया हुआ है वो भी एजुकेशन पे ही। इसके अलावा पीजीडी से किया हुआ है और जो मेरा एरिया ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड है, आईटी है और पीजीडी से है, तो मुझको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड जो एरियाज हैं, एकेडमिक अचीवमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर एजुकेशन, तो मेरा ग्रेजुएशन बायोलॉजी में है, तो पेडागोजी सब्जेक्ट में बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस में भी इंटरेस्ट रखता हूँ।
ओके सर, और सर यहाँ पर कब से बीएड और इस मतलब इंस्टीट्यूट में बीएड और डीएलएड कितने सालों से है, मतलब कौन से ईयर से शुरू हुए हैं ये दोनों कोर्स?
इस कॉलेज में मुझको 4 इयर्स अभी हो जाएंगे जुलाई में, लास्ट में मतलब लगभग हो गए। 17 में मैंने ज्वाइन किया था। बीएड यहाँ पे 2013 से है, जब 2 ईयर कोर्स था।
2013 से?
हाँ 13 से, 1 ईयर कोर्स था 13 से, 15 से 2 ईयर कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और लगभग सारे में, सारे कॉलेज में 15 से हुआ है। और डीएलएड यहाँ पे आया है 2019 में, 18 में हमको मिल गया था
जी,
लेकिन जो परमिशन वहाँ से मिली काउंसलिंग के थ्रू, 18 में हम लोग लेट हो गए थे, काउंसलिंग हो चुकी थी, अलॉटमेंट हमको 19 से हुआ है। तो अभी 2021 में डीएलएड की फर्स्ट बैच पास होगी और बीएड की तो कई सारी बैच निकल चुकी है। ये 13 से है बीएड यहाँ पे।
ओके ओके सर, और सर एनसीपीई का अप्रूव्ड इनटेक क्या है ये दोनों कोर्सेज के लिए?
बीएड के लिए 100 है और डीएलएड के लिए 50 है।
पर यूनिट है ये सर?
हाँ पर यूनिट है, 50 यूनिट है, उसमें 2 यूनिट है तो 50-50 के 2 है, 100 यूनिट है
बीएड में
जी।
अच्छा, और डीएलएड में भी सेम?
डीएलएड में 50 है
तो नहीं,
मतलब जैसे बीएड में हर साल हमको 100 सीट्स मिलती हैं।
ओके गॉट इट,
और डीएलएड में 50 मिलती
है। गॉट इट, ठीक है। और सर 2019 और 2020 में लगभग कितने बच्चों ने एडमिशन लिया होगा ये दोनों कोर्सेज में?
बीएड में हमारे 100% हो जाता है एडमिशन, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है
जी
वो एग्जाम करती है, एंट्रेंस एग्जाम
जी।
तो 19 में भी 100 स्टूडेंट्स हो गए थे।
ओके,
और वो उसमें से अभी कुछ बच्चों ने सेकेंड ईयर में छोड़ा है, तो वो एडमिशन पूरे हो गए थे उस समय, बाद में तो एक दो बच्चे हर कॉलेज में छोड़ ही देते हैं किसी कारण से
जी।
और डीएलएड में हमारे यहाँ 19 में सिर्फ 5 बच्चों ने एडमिशन लिया था, नया कॉलेज था तो 11-12 लोगों का नाम आया था उस समय, क्योंकि वो उनके पास ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5-6 बच्चों ने एडमिशन लिया था, एक ने कैंसिल कराया। तो अभी सेकेंड ईयर हमारे पास 5 बच्चे हैं।
ओके,
और फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर डीएलएड में
जी
टोटल 38 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अभी जब एग्जाम फॉर्म उन्होंने फिलअप किया है, ये ईयरली कोर्स है
जी जी
जो डीएलएड है वो, तो अभी 34 स्टूडेंट्स हैं, 4 लोगों ने उसको डिनाई कर दिया, नहीं करेंगे बोल दिए, कुछ और कोर्स कर रहे हैं, छोड़ दिए, कुछ प्रॉब्लम है।
और तो
अभी 50 में से 34 एडमिशन हुए थे लास्ट ईयर 20 में।
34 ओके सर, और बीएड का क्या इनटेक था 2020 में?
बीएड में सारे में 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं।
ओके सर, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रपोर्शन के बच्चे डीएड और डीएलएड में सिक्योर करते हैं एडमिशन, मतलब क्या बैकग्राउंड होगा उनका, आर्ट साइंस कॉमर्स या बायोलॉजी या इसके अलावा कुछ और?
अभी जो रिसेंट में मैम जो 18-19 से मैं देख रहा हूँ 17 से
जी,
साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं।
ओके
अभी इस साल और लास्ट ईयर मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं, एमबीए वाले बच्चे भी हैं। इस साल एक बच्ची तो फोरेंसिक साइंस की हुई है, एमएससी फोरेंसिक साइंस, एमबीए किए हुए बच्चे हैं। और फ्रेशर्स ज्यादा आ रहे हैं, जो रिसेंट के ग्रेजुएट होते हैं ना
जी,
वो बच्चे आ गया। और पहले जब स्टार्ट किया था कैरियर मैंने, तो उस समय थोड़े एजेड लोग आते थे
जी,
जो कहीं जॉब में है या जो फ्रेशर्स हैं वो कम आते थे, डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद जो एडमिशन लेते वो कम होते थे। और उस समय जो आर्ट्स का रेशियो था वो 70-30, 60-40 ऐसा होता था आर्ट्स और साइंस का
जी।
लेकिन अभी उसके लगभग अपोजिट है, अभी हिंदी सोशल साइंस के बच्चे कम हैं और साइंस के बच्चे ज्यादा हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स के ज्यादा हैं, पेडागोजी मैथमेटिक्स के वो ज्यादा हैं। इंजीनियरिंग की मैथ्स ही लेते हैं लोग, और कुछ पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं पेडागोजी में, तो ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड के हैं।
तो अगर प्रपोर्शन देखा जाए साइंस मैथ्स और आर्ट्स का, तो आप क्या कहेंगे फिर?
मुझको जैसा अंदाज है अभी 70-30% के आसपास होंगे मैम।
अच्छा, और 70 आप कह रहे हैं साइंस के होंगे?
साइंस के, हाँ 60-40, 70-30 होंगे, तो वो उसमें साइंस के बच्चे ज्यादा हैं।
ओके सर, ठीक है। सर, आप आपके स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब उनका बैकग्राउंड जो है वो उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे,
मतलब जो कोर्स उन्होंने करके आया है?
हाँ सर, मतलब अभी जैसे आपने कहा कि अभी उन्होंने एडमिशन ले ली, लेकिन उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसा होता होगा जो आपके यहाँ पर उनको एडमिशन मिलती है?
अब ये तो जैसे पहले जो चाहे आर्ट्स ग्रुप का हो चाहे साइंस ग्रुप का हो, एंट्रेंस एग्जाम होता है तो मेरिट बेसिस पे अलॉटमेंट होता है।
ओके,
मतलब उनको रैंक मिलती है, फिर वो जिस भी कॉलेज में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो कॉलेजेस को सिक्वेंस में सेलेक्ट कर लेते हैं प्रेफरेंस वाइज अपने। लेकिन अभी लास्ट ईयर कोविड के कारण एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन हो गया,
करेक्ट,
तो उनके ग्रेजुएशन में जो उनका जो परसेंटेज था उस पे मेरिट बेसिस पे लिस्ट बनी और उन्होंने वो कॉलेज को सेलेक्ट किया है। तो उसमें हम लोगों का कोई रोल होता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां से काउंसलिंग के थ्रू आते हैं।
अच्छा,
तो ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन लाया, फर्स्ट रैंक लाया है, वो हमारे यहाँ आ जाए या किसी दूसरे कॉलेज में चला जाए, तो ये बोल नहीं सकते कि मतलब कि वो रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी चॉइस के ऊपर है। अब जिसका रैंक टॉप में है जो, उसको पहले मिलती है चॉइस सेलेक्ट करने की, ऑप्शन फॉर्म भरने की।
राइट, समझा। तो सर, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे फर्स्ट क्लास परसेंटेज से कितने बच्चे आते होंगे आपके कॉलेज में?
अच्छा, फर्स्ट क्लास बच्चे, ये हम लोग कभी काउंट तो किया नहीं है
लगभग,
लेकिन लगभग इस बार तो मैक्सिमम फर्स्ट क्लास ही होंगे, क्योंकि
अच्छा,
मतलब 60-70% तो होंगे ही, क्योंकि जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं
अच्छा,
बच्चे वेल क्वालिफाइड हैं, और आर्ट्स में भी हैं बहुत सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। तो एग्जैक्ट फिगर चाहिए होगा तो एंट्री हमारे पास
तो नहीं चाहिए, लेकिन लगभग ही अगर पता चले,
हाँ, वो 50-60% प्लस होंगे 100 में, आउट ऑफ 100 में से। और डीएलएड में तो सेकंड डिवीजन ज्यादा है,
अच्छा,
तो ज्यादातर सारे वो उसमें एक मैथ्स की है जो सेकंड ईयर में अभी बच्चे पहुंचे 19 बैच के, तो एक मैथ्स वाली है, एक साइंस वाली है, बाकी आर्ट्स वाले बच्चे हैं।
अच्छा,
तो यहाँ आसपास ये थोड़ा सा आउटर है सिटी का, हमारा कॉलेज है, तो आसपास के गांव के बच्चे ज्यादा रहते हैं बीएड में, लेकिन शहर के ज्यादा रहते हैं
बीएड में, शहर के ज्यादा,
हाँ, तो उसमें झारखंड बिहार यूपी के और छत्तीसगढ़ के बाकी शहर के भी रहते हैं।
ओके सर, समझा। तो सर आपका मतलब अभी अगर ये आ गए, जैसे आप कह रहे हैं आपके हाथ में तो है नहीं एडमिशन, लेकिन एडमिशन होकर जब आते हैं और जब आप उनको पढ़ाने लगते हैं, तो फिर उनके एकेडमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपका क्या अनुमान लगता है?
उसमें मैम करीब, अब ये तो उनके लिए एकदम डिफरेंट कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, ट्रेनिंग भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ही होते हैं जो थोड़े रूरल एरिया से हैं, उनमें बस थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं टीचिंग के लिए, तो अगर पहले उनको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला है कि क्लास में इतने सारे बच्चों के सामने जाके पढ़ाएं, तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं।
अच्छा, तो ये को एक्सपोजर पहले नहीं मिला हो?
हाँ, तो उनको अगर थोड़े इंट्रोवर्ट है तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम 20-30% बच्चे ऐसे रहते ही हैं।
अच्छा।
और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी स्कूल में पढ़ा के आए होते हैं, क्योंकि उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए बीएड चाहिए।
राइट, समझा। तो उनके लिए इजी हो जाता है?
उनके लिए इजी हो जाता है। अभी मैंने देखा जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं वो अच्छा ही करते हैं, उनको उतना हेजिटेशन और ये सब नहीं होता है,
क्योंकि वो ऑलरेडी सिखा के आए हैं।
हाँ, सिखा के आए हैं या उनके स्कूल में ये सब एक्टिविटीज होती होंगी जो स्टेज पे और दूसरी ऐसे एक्सपोजर उनको मिलता होगा या कॉम्पिटिशन होते होंगे।
राइट सर, राइट। तो सर आपके स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के एकेडमिक प्रोफाइल के साथ अगर कंपेयर करने बोला जाए तो आपका क्या मतलब आपकी क्या राय होगी
इसमें मैम? जब ये काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हैं ना
जी,
तो लगभग एक ही जैसे बच्चे में जो मिक्स टाइप के हो जाएंगे वो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे कॉलेजेस में। अब उसके बाद जो हमारे कॉलेज का ट्रेनिंग का तरीका कैसा है तो वो उनमें निखर के आएगा जो बीएड कोर्स के से रिलेटेड। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं, जैसे अभी माइक्रो टीचिंग हमारे कोर्स में नहीं है, हटा दिया गया रविशंकर यूनिवर्सिटी में।
ओके।
फिर भी हम उसको करवाते हैं।
ओके।
और लास्ट ईयर उन्होंने ऐड किया, उसके पहले 3 साल हटा दिया था, 3-4 साल, तो जब से 2 ईयर कोर्स हुआ था उन्होंने 19 में फिर से ऐड किया है।
अच्छा।
जो काउंसिल ने
हाँ।
तो सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने रखा है, लेकिन हम लोग उसको थर्ड सेम में पहले भी कराते थे।
ओके।
ताकि वो स्कूल में जब जाए उसके पहले हाँ। उनको वो प्रैक्टिस हो जाए एक बार, जो पीयर ग्रुप में उनको पढ़ाने का जो हिचक है वो निकल जाए
जी।
और बाकी तो जो टीचिंग होती है सिलेबस सबका सेम है और बच्चे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जैसा उनको काउंसिलिंग में रैंक वाइज मिलता है।
राइट।
तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए।
ओके सर, आप कह रहे हैं ये जो आपका कोलंबिया कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है ये कौन से यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है?
ये पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है रायपुर।
पंडित
रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी।
और सर ये प्राइवेट ऑटोनोमस है क्या
ये यूनिवर्सिटी?
यूनिवर्सिटी और आपका कॉलेज मैनेजमेंट क्या?
कॉलेज प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी अंडर गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट की टेंडर में आती है, यूजीसी से रिलेटेड तो है, प्राइवेट नहीं है वो,
और
यहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है।
अच्छा। और आपका कॉलेज प्राइवेट एडेड है या अनएडेड है?
अनएडेड है, मतलब प्राइवेट है, रविशंकर से रिलेटेड है, अनएडेड है।
अनएडेड ना? ओके सर, ठीक। तो सर आप कह रहे थे कि अच्छा, और सर आपके यहाँ पे वुमेन और मेन का प्रपोर्शन क्या होगा सर एडमिशन के टाइम?
एडमिशन के टाइम जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट्स कम होते हैं, गर्ल्स ज्यादा होती हैं।
ओके।
वुमेन ज्यादा होती हैं, तो क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं ना कि कितने उनको यहीं से देते हैं।
ओके।
तो लगभग 70-75% गर्ल्स होती है। पिछले 3-4 साल से, तो यहाँ देख, जब से मैं यहाँ हूँ 17 से 70-75% गर्ल्स होती हैं।
अच्छा। ओके। और सर आप कह रहे, आप अगर एक बार दोबारा बताएंगे कि बच्चे कैसे एडमिट होते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है क्या?
हाँ, इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, सीजी व्यापम हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में,
सीजी व्यापम,
व्यापम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल।
ओके,
तो वो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो उन लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एससीईआरटी के थ्रू, और फिर रिजल्ट वो दे देते हैं एससीईआरटी को। फिर एससीईआरटी एक आउटसोर्स से लास्ट ईयर तक वो लोग काउंसलिंग कराते थे।
ओके,
वो पुणे की थी वो कंपनी।
ओके,
तो उनसे कराते थे, लेकिन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर से वो खुद करते हैं।
अच्छा,
खुद करते हैं या कोई और होंगे दूसरी कंपनी के?
जी,
तो मैं मुझको जहां तक मालूम है अभी इस साल खुद कर रहे थे वो लोग लास्ट ईयर।
ओके,
तो फिर जो अलॉटमेंट है वो पूरा एससीईआरटी करती है, एंट्रेंस लेके सीजी व्यापम उनको रिजल्ट दे देती है।
ओके सर, तो सर मतलब कौन से कॉलेजेस है जो हाई रैंक स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं बीएड और डीएलएड के लिए?
मैम वो लोग कर ही नहीं सकते।
नहीं मतलब बच्चे मतलब आप कह रहे हैं ना वो लिस्ट बनाते हैं, 10 लिस्ट उनको बनानी पड़ती होगी उनको?
नहीं, वो क्या है जैसे एससीईआरटी है ना
जी,
एससीईआरटी जो व्यापम ने उनको रिजल्ट दिया।
ओके,
अब उस रिजल्ट का वो रैंक बनाते हैं।
अच्छा,
मतलब मेरिट रैंक, मेरिट लिस्ट बनाते हैं
जी,
फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो मान लीजिए 45,000 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस दिलाया तो उनका सबका रैंक बनेगा।
ओके,
तो वो जब जैसे फर्स्ट राउंड चला तो मान लीजिए उन्होंने 10,000 तक के स्टूडेंट्स को लिया हुआ है, टोटल यहाँ पे 13,000 तक यहाँ पे सीट है छत्तीसगढ़ में।
ठीक है,
तो उतने बच्चों का वो लिस्ट निकालते हैं।
ओके,
फिर वो बच्चे ऑप्शन फॉर्म भरते हैं, उनको 10 कॉलेज का नाम डाल लो, 20 का डाल लो, 30 का डाल लो, वो ऑप्शन फॉर्म भरते हैं
जी।
फिर उनके रैंक वाइज जो कॉलेज उनको फिर जो फर्स्ट प्रेफरेंस जहाँ पे रैंक में फिट होता है वो उनको अलॉटमेंट चला जाता है,
तो
उस लेटर को निकाल के फिर एडमिशन लेते हैं। तो कॉलेज वालों का इसमें कोई चॉइस नहीं है कि
कॉलेज वालों का नहीं पूछ रही थी मैं, बच्चों का ही पूछ रही थी।
अच्छा, बच्चों को क्या?
हाँ, बच्चों को कौन से कॉलेज में जाना उनको प्रेफरेबल रखता है? रैंक मुझे समझ में आ गया कि मतलब अगर मुझे 10th रैंक मिला है तो हाँ, मेरे रैंक के हिसाब से मुझे 10 कॉलेजेस चूज करने का मौका मिलेगा, राइट, एज अ स्टूडेंट।
अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जिनको प्रेफरेंस देते होंगे?
हाँ, बच्चे।
एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैम कई कैटेगरी के बच्चे हैं।
ओके,
जैसे जो कुछ लोअर मिडिल क्लास है तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस को पहले, उनको तो अटेंडेंस का कोई दिक्कत है नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हैं।
ओके,
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे दो ही हैं, रायपुर में, बिलासपुर में। आलोक शर्मा सर जैसे रायपुर में है
जी जी,
और एक कल्याण कॉलेज है, वहाँ भी सीट्स करीब 200 के अंडर में है, मतलब 100 सीट प्लस है वहाँ पे।
ओके,
तो वहाँ भी वो एडेड कॉलेज है, तो वहाँ फीस कम है भिलाई में।
ओके,
तो दूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
ओके,
और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं
हाँ,
तो वहाँ पे यहाँ पे फी फिक्सेशन कमेटी है, वो एक फैसिलिटी वाइज कॉलेज की
हाँ,
फिक्स कर देती है फीस को।
अच्छा,
तो शहर के जो बच्चे हैं जो यहाँ के, तो वो तो जो पे कर सकते हैं वो किसी भी कॉलेज में ले लेंगे। हाँ, तो जो मैक्सिमम जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना मैम
हाँ,
उनको वो शहर का उनको पहले मिल जाता है, चाहे भिलाई जैसे पास में 40 किलोमीटर, और उसके बाद वाले बैंक रैंक वाले हैं, अगर उनको यहाँ का लोकल कॉलेज चाहिए भी रैंक नहीं है तो फिर उनको नहीं मिलता, सीट फुल हो जाती तो बाहर का लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो हाँ, पुराने हैं और अच्छे हैं
हाँ,
जैसे रायपुर में एक तो हमारा तो 13 से है, लेकिन उसके भी पहले से 98-99 से पंडित हरिशंकर स्कूल कॉलेज है।
ओके, ओके,
और प्रगति कॉलेज है
हाँ,
और रविशंकर यूनिवर्सिटी में भी सेल्फ फाइनेंस्ड उनका कॉलेज है।
अच्छा,
तो वो है, कल्याण कॉलेज तो बहुत फेमस है, पुराना है, फैकल्टीज भी वहाँ पे अच्छे हैं, कोर्सेज भी वहाँ पे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, तो टीचर्स भी बहुत सीनियर है, लेकिन वहाँ के लोकल बच्चे ज्यादा लेते हैं
हाँ,
या जो अदर स्टेट का कोटा है वो लोग ले लेते हैं
जी।
तो ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे लोकेशन को प्रिफर करते हैं और कुछ फीस को देखते हैं।
लोकेशन फीस, राइट
हाँ।
तो सर आपके यहाँ पे कौन से रैंक के बच्चे आते होंगे?
मैम हमारे यहाँ तो 200 वाले बच्चे भी आ चुके हैं, अंडर 100 वाले बच्चे भी आ चुके हैं।
अच्छा, ओके
हाँ, तो ये रैंडम होता है कि उनके चॉइस पे है ना।
हाँ बराबर।
और 45,000 वाले भी आ जाते हैं कभी कभी।
अच्छा।
तो सीट अगर है
हाँ।
तो ठीक है। जैसे हमारा कॉलेज है करीब 70% सीट फर्स्ट राउंड में फिलअप हो जाता है। उनको 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलती है।
हाँ।
तो अगर हमारे कॉलेज को प्रेफरेंस कितना मिलता है उसको अगर देखना होगा तो सिटी के जो कुछ कॉलेजेस हैं उसमें मान लीजिए 100 में से फर्स्ट राउंड में 90 सीट्स पुल हो गई और हमारे यहाँ 60-70 सीट्स पुल हो गई, तो मतलब वो शहर वाले कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है हमारे
समझा। ओके सर। और सर कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और साइंस टीचिंग लेते हैं एडमिशन होने के बाद और उनका प्रोफाइल क्या होगा?
इसमें मैम एक नॉर्म्स है।
हाँ।
उसको सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में जो उनका सब्जेक्ट होता है ना
ओके
उस बेसिस पे हम लोग उनको पेडागोजी सब्जेक्ट देते हैं। जैसे मैथ्स वाले हैं
हाँ
तो पेडागोजी में फिजिकल साइंसेस और मैथमेटिक्स जैसे कोई एक लेने बोलते हैं।
ओके।
वन ईयर कोर्स में दो पेडागोजी लेना पड़ता था, उस समय उसको मेथोडोलॉजी बोलते थे, तो अभी उसको पेडागोजी बोलते हैं और एक ही लेना पड़ता है। तो मैथ्स या फिजिकल साइंस ले सकते हैं और जो बायोलॉजी वाले हैं
जी
वो बायोलॉजिकल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस लेते हैं।
तो ये तो सर सिर्फ बीएड में होगा ना?
हाँ बीएड में।
राइट। और डीएलएड में तो उनको सब कुछ ही पढ़ना होगा?
डीएलएड में उनको एक सब्जेक्ट है जो उनके जो सेकेंड ईयर में
हाँ।
जो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है ट्वेल्थ के, बाकी सारी चीजें उनको कंपलसरी रहती है।
मतलब अगर कॉमर्स लिया है तो सेकेंड ईयर में मैथ से रिलेटेड होगा, साइंस होगा तो वैसा।
नहीं, कॉमर्स वाले तो मैं हम लोग आर्ट्स देते हैं।
अच्छा कॉमर्स।
आर्ट्स ग्रुप में हिंदी या सोशल साइंसेज। और मान लीजिए किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मैं इंग्लिश किया हुआ लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में
जी।
या एमएससी फिजिक्स किया हुआ है या एमए पॉलिटिकल साइंस है तो वो सोशल साइंस में चला जाएगा। एमए हिंदी है तो हिंदी। कई लोग साइंस में ग्रेजुएशन होने के बाद उधर आर्ट्स में एमए कर लेते हैं, एमए हिंदी कर लेते हैं, एमए इंग्लिश कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे उनको पेडागोजी दे देते हैं।
राइट।
जबकि वो साइंस ग्रेजुएशन तक साइंस का स्टूडेंट है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने आर्ट्स लिया हुआ है
तो फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनको पेडागोजी में।
हाँ, तो हम तो बोलते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही, लेकिन अगर उसकी चॉइस है कि उसने पीजी किया है, मैं इंग्लिश किया हुआ है या हिंदी लैंग्वेज में किया है तो उनको दे देते हैं।
राइट राइट। और सर ये जो एक साल इतने सालों तक एक साल बीएड चला फिर दो साल का हो गया तो बच्चों का प्रोफाइल चेंज हुआ है क्या जब से ये दो साल हो गया है तब से?
जो वन ईयर कोर्स है ना मैम
जी सर,
तो जैसे हम लोग वन ईयर कोर्स से पढ़ाते आ रहे हैं तो मुझको ये कोर्स वाकई अच्छा है।
दो साल का?
दो साल का। मतलब करिकुलम अच्छा है, सब अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है।
ओके।
लेकिन ये क्या हो रहा है इसमें बच्चे, मैं 18 में एक नेशनल डायलॉग में गया था बीएचयू में तो वहाँ पे हेड और प्रिंसिपल के लिए ऑर्गेनाइज था तो मुझको लगता था ये प्रॉब्लम हमारे स्टेट में है।
तो
वहाँ पे सारे स्टेट के लोग आए थे।
हाँ।
आपके मुंबई में एसएनडीटी कॉलेज से भी एक मैम आई थी तो सभी लोगों का यही था।
हाँ।
कि सभी लोग परेशान है, बच्चों को क्या लगता है फीस डबल हो गई और ड्यूरेशन भी डबल हो गया।
हाँ।
तो ज्यादातर बच्चे हमसे पूछने आते हैं कि क्लास नहीं आएंगे तो चलेगा क्या
अटेंडेंस।
हाँ, तो उनको वो, और वन ईयर कोर्स में क्या होता था अगस्त तक पूरी काउंसलिंग हो जाती थी।
हाँ।
उनकी पढ़ाई चालू हो जाती थी।
हाँ।
और उधर फरवरी में उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाते थे फरवरी।
हाँ।
मार्च में।
हाँ।
और उसके बाद अप्रैल मई में उनका। हाँ। फाइनल एग्जाम हो जाता था।
हाँ।
तो उनको वो कोर्स कोई कभी पूछता ही नहीं था कोर्स के बारे में, एडमिशन लेके कंटिन्यूअसली वो सारे जितने भी उस समय के जो कोर्स में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट होता था वो कम्प्लीट हो जाता था
जी।
और अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, दो साल का कोर्स है। अब जैसे हमारे ये हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया कि अब अपने हिसाब से सिलेबस बना सकते हैं।
हुँ।
हमारे यहाँ जो कमेटी ने बनाया है तो जो ऑब्जर्वेशन है स्कूल ऑब्जर्वेशन।
हाँ।
तो वो सेकेंड सेमेस्टर में है। सेकेंड सेमेस्टर में है तो यहाँ पे उस समय सीबीएसई का फरवरी में एग्जाम चालू हो जाता है तो बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो स्कूल वाले मना करते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको लगता है कि ये टीचिंग के लिए ही आ रहे हैं। और दूसरा जो इंटर्नशिप है थर्ड सेमेस्टर में।
हाँ।
वो 4 मंथ का है।
हाँ।
तो कोई भी स्कूल 4 मंथ का कभी नहीं देता,
राइट,
खासकर प्राइवेट स्कूल वाले।
हाँ,
बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, गांव के भी हैं, तो भी नहीं देते, बोलते हैं बच्चों की पढ़ाई खराब होगी।
ऑफ कोर्स, हाँ,
क्योंकि हर स्टूडेंट जो बीएड ट्रेनी है, हाँ, वो उतना सीरियस होकर उनको नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो समझता है कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूँ, कोर्स है। बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सीरियसली उस कोर्स को कराते हैं, और उनको लगता है कोर्स का पार्ट है, इसको जैसे भी निपटा दो। तो स्कूल टीचर्स भी देखते हैं कि 4 महीने देंगे नुकसान होगा। पहले 1 ईयर कोर्स में क्या होता था कि 40 क्लास लेनी होती थी, 2 पेडागोजी सब्जेक्ट था, जैसे फिजिकल साइंस और मैथ्स, या बायोलॉजिकल साइंस फिजिकल साइंस, तो 20-20 क्लास बस लेनी होती थी।
हाँ,
तो वो 20 दिन में हो जाता था।
ओके,
तो और आठ, हम लोग अभी भी 7-8 स्कूल लेते हैं। हाँ, और रेशियो भी उसका डिसाइडेड है, इससे ज्यादा नहीं करना है।
हाँ,
लेकिन हमको स्कूल के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है।
राइट,
और बच्चे भी 4 महीने कहाँ जा पाएंगे वो लगातार वहाँ पे, तो टीचर्स को हमको वहीं रखना होता है, सुपरवाइजर बना के। हालांकि वहाँ के एक टीचर को मेंटर बना देते हैं, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है।
राइट,
तो ये कुछ कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं जो आती ही हैं हर साल।
जी, सर इनका सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या होता होगा बच्चों का?
बच्चों का नाम, जैसे हमारे कॉलेज में आसपास यहाँ पे गांव है, शहर से एकदम लगा हुआ है, करीब यहाँ से 12-15 किलोमीटर में शहर है।
ओके,
तो आसपास के गांव के बच्चे ज्यादा हैं।
अच्छा,
लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट है,
हाँ,
तो उसके बच्चे मुश्किल से 30% के आसपास होंगे, तो वो मिक्स टाइप के हैं, शहर के भी गाँव के भी हैं। तो और बाकी सब रायपुर के बाहर के, मतलब छत्तीसगढ़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, और 20 बच्चे 100 में से 20% तो अदर स्टेट के होते हैं। तो उसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो बिहार, झारखंड के होते हैं, यूपी के बहुत कम रहते हैं कभी कभी।
अच्छा, तो सर आपका एग्जैक्टली कहाँ पर है कॉलेज?
ये है टेकारी करके गांव है, विधानसभा है छत्तीसगढ़ का, उससे लगा हुआ है 4 किलोमीटर।
टेकारी,
टेकारी, हाँ, और इसको मांडर कॉलोनी बोलते हैं इस एरिया को। तो उसके मतलब यहाँ पे पहले एक इंडस्ट्री थी सीमेंट की, बंद हो चुकी है। तो वो मांडर बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे गांव है टेकारी।
अच्छा, ओके, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्यादातर यहीं से गांव से ही बच्चे आते हैं।
हाँ, तो जो रायपुर के बाहर के बच्चे है ना, हाँ, वो भी मैक्सिमम गाँव के ही है।
राइट,
जो शहर के बच्चे हैं वो रायपुर, भिलाई, और अगर बिलासपुर में किसी बच्चे को नहीं मिला, रैंक उसकी कम है, तो यहाँ ले लिया, ऐसे पूछे होते हैं।
ओके,
तो ज्यादा से ज्यादा 20% होंगे।
अच्छा, राइट। और सर अगर अपने बच्चों ने अगर ये टीचर एजुकेशन बीएड डीएलएड ना चूज किया होता, तो इनके ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या होते सर आपके हिसाब से?
अब ये अभी इस बार मैक्सिमम बच्चे तो इंजीनियर है, ट्रेन बीई करके आए हैं, कोई एमटेक करके भी एक दो बच्चे आए हैं।
अच्छा,
अब इनको जॉब है नहीं, तो ये लोग या तो ट्यूशन ले पढ़ा रहे हैं,
हाँ,
और या फिर स्कूल में जाते हैं। अब वो स्कूल का कंडीशन है, उनको बीएड होना चाहिए,
राइट,
तो वो लोग वो जॉब नहीं है अपनी फील्ड में, तब वो टीचिंग लाइन में आ गए, तो बीएड करना पड़ा।
राइट,
और
अगर नहीं करते तो फिर ये इंजीनियर होते हैं।
वो तो है ही इंजीनियर, उनको जॉब नहीं मिल रहा इसलिए वो आ गए।
अच्छा, तो और क्या प्रोफेशन होगा सर
इनके लिए?
हाँ, मतलब अगर टीचिंग नहीं करते या नहीं करना है, तो आपके हिसाब से इनके लिए ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन कौन से होते होंगे?
अच्छा, उनको तो उनके टेक्निकल प्रोफेशन में जाना चाहिए, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहिए, लेकिन अब उनको हो सकता है वैसा घर पे कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, बताने वाला ना हो, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं,
हाँ,
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाकर बैंक में जा सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले तो वैसे ही उनको नॉलेज तो रहता है, बैंक में जा सकते हैं, और दूसरे जो और भी हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जॉब के इस बार,
तो
उनके पास ऑप्शन तो है, लेकिन सबसे इजी इनको लगता है टीचिंग जॉब।
तो मैं एक्चुअली सर वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो अगर आप कह ही रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शन थे, अगर उसके बाद भी वो यहाँ पर आते हैं तो एक तो है कि कहीं और मिला नहीं इसलिए आ गए, लेकिन एक्चुअली आपको लगता है आपके हिसाब से इनका मोटिवेशन क्या होगा आने के लिए?
ये बीएड कोर्स के लिए,
टीचर एजुकेशन कोर्स के लिए, बीएड डीएलएड कुछ भी,
बीएड डीएलएड के लिए? इनको वही बताया मैंने, मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं ना उनसे जैसे पूछता हूँ मैं, मुझको दुख होता है, मैं पूछता हूँ एमटेक की हो एमबीए की हो उसके बाद आप बीई करके आ रही हो, एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है इस बार
जी।
कोविड में तो कुछ बच्चों को अभी तक देखा नहीं है सर, कुछ ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन फोन पे भी बात होती है, उनका मीटिंग लेते हैं, क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उनसे पूछते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में क्यों नहीं जाते हो, ये क्यों कर रहे हो, बीएड करने क्यों आ रहे हो, तो बोले हम स्कूल में जॉब कर रहे हैं ना तो हमको बीएड कंपलसरी बोल दिया, 2 साल का टाइम दिया, 3 साल का टाइम दिया, तो बाय चॉइस है लोग नहीं आ रहे हैं अभी। जब हमारा बीएससी बीएड बीए बीएड हो जाएगा तो जैसे ये लोग 11th 12th में बच्चे मेडिकल में जाना है इंजीनियरिंग में जाना है पहले से प्रिपेयर करते हैं, उस समय हो सकता है कि वो बाय चॉइस आए जब 11th 12th में वैसा सब्जेक्ट लेके आ जाए, यहाँ हमको 4-year degree कोर्स करना है तो वो थोड़े सीरियस होंगे। अभी तो मैक्सिमम बच्चे कुछ है इसमें रहते हैं जो उनको टीचिंग लाइन में शुरू से अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनका स्टेटस भी अच्छा है, इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है, फिर भी वो बाय चॉइस आते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे वो वो उनको यही रहता है कि हम स्कूल में पढ़ा रहे तो या पढ़ाएंगे तो हमको ये डिग्री लगेगी।
तो सर जो एकदम कम बच्चे हैं जो यू नो सच में आते हैं उनका क्या मोटिवेशन होगा, वो क्यों आना चाहते हैं?
जो मतलब टीचरशिप के लिए ही जो आना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट रहता है मैम टीचिंग में, ऐसा उनको रहता होगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएड करके जाने के बाद दूसरे जॉब करते हैं, टीचिंग लाइन में नहीं जाते। जो पुराने बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, एक स्टूडेंट फोन किया लास्ट ईयर तो वो कोई एक्सिस बैंक में काम कर रहा है,
अरे बाप
रे, बीएड उसका डिग्री वेस्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो बीएड करके भी फिर उस लाइन में नहीं जाते, उनको फिर दूसरा मिल जाता है।
राइट राइट।
बिहार के झारखंड के मैक्सिमम बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो वो पूरे टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीएड उनके लिए पार्ट टाइम कोर्स है, कुछ नहीं हुआ तो हम टीचर बन जाएंगे।
बराबर। ओहो सर, ओके नो कमेंट, पर ठीक है। तो जो बच्चे एक्चुअली प्रोग्राम में आते हैं वो उनका इंटरेस्ट के वजह से ही आते होंगे, जिनको एक्चुअली
हाँ उनके इंटरेस्ट से आते हैं, और यहाँ पे जो वो वर्क करते हैं कुछ भी टास्क उनको दिया जाता है ना उससे समझ में आ जाता है कि उनके परफॉर्मेंस है, ये अपने चॉइस से आए, इनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में टीचिंग लाइन पे,
राइट,
इसलिए वो करने आ रहे हैं उनको, क्योंकि उनका काम दूसरों से एकदम अलग होता है।
हाँ ये भी है,
उनको कुछ एक्स्ट्रा समझाना या मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, बहुत लोगों से जबरदस्ती जो जरूरी चीजें हैं प्रैक्टिकल्स हैं फाइल्स हैं वो तो करवाना ही होता है।
तो सर स्टूडेंट्स को बीएड और डीएलएड के बारे में, इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता होगा आपके हिसाब से?
उनको मेरे हिसाब से ट्रेनिंग पार्ट ही लगता होगा।
ओके।
क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुबह उनको जाना होता है और शाम तक स्कूल बंद होने तक उनको वहाँ रहना है और वहाँ की सारी चीजें सीखनी है। पहले कोर्स में ऐसा नहीं था, वो अपने रहते दिन भर थे लेकिन क्लास लेते थे, और अभी के जो करिकुलम जो डिजाइन हुआ है उसमें उनको पूरा उनके हर काम में मदद करना है। लेकिन वहाँ पे एक मेंटोर होते हैं जो स्कूल से मिलता है इनको, 10 बच्चों के बीच 20 बच्चों के बीच, वो उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने सारे कामों में उनको इन्वॉल्व करते हैं। और कुछ स्कूल वाले तो उनको पूरे टाइम पढ़ाने के लिए दे देते हैं, टीचर नहीं तो क्लास लेने के लिए, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का है, टीचर्स की कमी है तो उनको क्लास लेने बोल देते हैं। अभी इनको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा हुआ है, इनको सिर्फ स्कूल का डिटेल लेना है, सीआरटी का एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 10 अलग अलग फॉर्मेट है, तो स्कूल का डिटेल लेना है, कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं,
बिल्डिंग
बिल कब होता है, बच्चे कितने, ऐसे सारी चीजें हैं उसमें। तो लेकिन वो टीचर उनसे क्लासेस करवा रहे हैं अभी पढ़ाओ बोलता ऑनलाइन,
राइट, क्योंकि टीचर्स की कमी है,
टीचर्स की कमी है,
राइट। तो सर हाँ सॉरी,
तो जिनको इंटरेस्ट है टीचिंग में तो उनको तो मजा आएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचिंग में कम इंटरेस्ट है लेकिन बाकी करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा है, तो वो भी उनको वहां पे मिलता है।
राइट राइट,
तो ट्रेनिंग पार्ट इसका उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा।
बराबर। और कौन सा ऐसा पार्ट रहेगा जो बच्चों को थोड़ा इश्यू होता रहेगा उसमें?
मतलब पूरे करिकुलम में?
पूरे करिकुलम में जी, और दोनों प्रोग्राम्स में।
वो तो एक एग्जाम ही हो सकता है और वैसे मैक्सिमम बच्चों को जो ट्रेनिंग है ना वो प्रॉब्लम ही लगता है, क्योंकि 4 मंथ का ट्रेनिंग है तो थर्ड सेम इंटर्नशिप है वो 4 मंथ का है।
हाँ।
तो मैक्सिमम बच्चों को उसी में प्रॉब्लम होता है कि हम इतना दिन, क्योंकि सुबह से शाम तक स्कूल में है और उनको बोल के रखा रहता है कि इस बीच आपको छुट्टियां नहीं लेनी है।
हाँ।
तो वो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल टीचर हमको अटेंडेंस देते है ना,
राइट,
आपको मिलेगा नहीं तो मार्क्स पे इफेक्ट आएगा, ऐसा उनको थोड़ा सा डराना ही पड़ता है। तो मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है।
अच्छा।
खैर 4 मंथ तो हम लोग को स्कूल वाले देते ही नहीं है।
हाँ,
कहीं 2.5 महीने कहीं 3 महीने।
अच्छा।
तो मिडिल में करीब 2 महीने आधे दिन और आधे दिन हायर स्कूल हायर सेकेंडरी में ट्रेनिंग होती है, वो अलग अलग स्कूल में उनको शिफ्ट कर देते हैं, फिर चेंज करते हैं वो लोग।
हाँ, हाँ।
करते हैं।
ओके सर, ओवरऑल आपके हिसाब से बच्चों को ये 2 साल का बीएड और डीएलएड प्रोग्राम कैसा लगता होगा?
मैं आपको शुरू में ही बताया, ये उनको ना इकोनॉमिकली भी ठीक नहीं लगता कि 2 साल का कोर्स फीस डबल हो गई।
हाँ।
अब तो खैर अभी के बच्चे तो पूछते जानते भी नहीं कि पहले 1 ईयर कोर्स था।
हाँ।
जो शुरू की बैच थी जैसे 15 में तो कुछ सीट्स बहुत सारे कॉलेज में लगभग सीट बहुत सारी खाली रह जाती थी, 10 सीट 15 सीट, क्योंकि 2 ईयर कोर्स है और उस समय ऐसा र्यूमर था कि वापस 1 ईयर हो जाएगा तो लोग वेट करते थे, जल्दी हो जाएगा, ड्यूरेशन कम होगा, फीस भी कम लगेगी। तो अभी लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो अब तो सारी सीट्स फुल हो जाती है बीएड की। डीएलएड में हमारे यहाँ थोड़ा सा इश्यू होता है, इस बार तो गया है 38 तक 34 तक, लास्ट टू लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो कम थे बच्चे।
तो सर बच्चों का ओपिनियन ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लेकर क्या है?
वो उसके लिए तो वो लोग सारे दिलाते हैं एग्जाम, तो कभी ऐसा पूछा नहीं उनसे, लेकिन वही तरीका है एंट्रेंस कॉलेज को अलॉटमेंट का, उनको तो दिलाना ही पड़ेगा। मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पूछ रहे हैं?
नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि बच्चों की क्या राय है इस टीटी एग्जाम को लेकर,
मतलब किस बारे में,
मतलब
अच्छा है बुरा है?
हाँ, होना चाहिए अच्छा नहीं बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं, जनरली।
अब वो मैक्सिमम बच्चे तो यही चाहते हैं कि ना हो, डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट कोटा नहीं है क्या? जैसे हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज है वहाँ मैनेजमेंट कोटा भी होता है, इंजीनियरिंग में भी जहाँ तक होता है, हमारे बीएड में ऐसा नहीं है।
हाँ।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं और कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते इसलिए भी आके पूछते हैं, एंट्रेंस का डेट उनकी जा चुकी होती है।
हाँ।
तो इस कारण से भी पूछते हैं, लेकिन अब उनको मजबूरी है, अच्छा लगे चाहे ना लगे एंट्रेंस तो दिलाना पड़ेगा। लेकिन कभी कोई बोले नहीं कि हमको डायरेक्ट हो जाए, ये जो फंसे रहते हैं ना मजबूरी में जिनको फॉर्म नहीं भर पाया उन्हीं लोग आके पूछते हैं कि एंट्रेंस ही एक तरीका है क्या, मैनेजमेंट के थ्रू ज्यादा अमाउंट देकर नहीं हो पाएगा क्या वो?
अच्छा। तो सर जब ये बच्चे आते हैं बीएड और डीएलएड में और 2 साल के बाद जब ये कोर्स खत्म करके बाहर निकलते हैं, तो आपकी राय में इन बच्चों में किस तरीके के चेंजेस आपको देखने मिलते हैं?
अब ये मैम टेक्निकल कोर्स है ना प्रोफेशनल, तो उनमें जो जब बच्चे आते हैं ना, जैसे अभी एमबीए है और इंजीनियर है, एमए किए हुए हैं, तो उनको बच्चों को लगता है ना कि हमको सब आता है और वो थोड़ा कोर्स के बारे में जानते नहीं है।
हाँ।
तो हम तो टीचिंग आता है, हम पहले 5 साल पढ़ाए हैं, हम तो 2 साल पढ़ाए हैं।
हाँ।
तो हमको टीचिंग में जाने का क्या जरूरत है?
हाँ।
इंटर्नशिप में तो उनको समझाना पड़ता है कि आप जो गए थे जैसा चाहे वैसा पढ़ाए और यहाँ पे उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना है, जैसे लेसन प्लान बनाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, जेस्चर पोस्चर का भी हम लोग इतना उम्स रखते हैं कैसा होना चाहिए, और आपको टीचिंग एड्स लेके जाना है डेली क्लास में। तो ये जब वो धीरे धीरे करने लगते हैं तो उनके एटीट्यूड में और उनके पूरे ओवरऑल बिहेवियर में वो चेंज तो आता ही है। तब वो जो पहले जो वो टीचिंग करते थे, कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ टीचिंग टीचर्स के लायक, जैसा उनका पहले भी ऐसा एटीट्यूड रहता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जो समझ में आता है कि हमको ब्लैक बोर्ड में कैसे लिखना है,
हाँ।
ये सारी चीजें पहले तो उनको नहीं मालूम थी, भले वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उनको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ हमको बहुत कुछ सीखने मिला है, और उनमें मैक्सिमम बच्चों में वो रिफ्लेक्ट भी होता है। क्योंकि जब स्कूल के टीचर्स बोलते हैं ना कि आपने 20 बच्चे भेजे, इसमें से ये 5 अच्छे हैं, ये 10 अच्छे हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, तो वहाँ से फीडबैक मिलता है हम लोगों को।
तो सर एक्चुअली मैं वही पूछ रहा थी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको किस तरीके का फीडबैक मिलता है स्कूल से स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए?
वो उनके सिंसियरिटी और नॉलेज वाइज जो क्लास देते हैं ना मैम, तो वो टीचर्स बताते हैं, क्योंकि इतने साल से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो बातचीत होती है, बच्चे ठीक हैं, कोई परेशान तो नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार कैसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो स्कूल जाना, वहाँ अटेंडेंस लगवा के वहाँ से गायब हो जाना, पढ़ाना नहीं, क्लास में तैयारी करके नहीं जाते। अब वहाँ के टीचर्स को ही मालूम है, ये ट्रेनिंग टीचर्स हैं तो ये टीचिंग एड लेके आएंगे, वहाँ के जो सीनियर सुपरवाइजर्स हैं वो भी उनको टोक देते हैं, तो उन्हीं से ज्यादातर फीडबैक मिल जाता है। और हमारे सुपरवाइजर जाते हैं तो हमारे पास एक कॉपी है, तो सुपरवाइजर असेसमेंट वो उसमें कमेंट लिखते हैं वो लोग पर डे, उनके हर दिन के लिए।
ओके ओके,
तो वो फीडबैक रिटर्न में रहता है हमारे पास।
अच्छा ओके सर, समझा। और सर ये बच्चे जो है वो टीचिंग लेने के बाद, मतलब बीएड या डीएलएड खत्म हो गया फिर टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या वो आपके साथ टच में है, मतलब आपका कोई अलुमिनाई ग्रुप है?
हाँ, करीब 40-50% बच्चे रहते हैं टच में। जैसे हमने ग्रुप बनाया हुआ है, अब नेट के लिए जा रहे हैं तो एलुमिनाई के भी प्रोसेस में है पिछले 6 साल भर से।
ओके,
तो 40-50% बच्चे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कोई भी नोटिस को बहुत फास्ट हमको उनको देना हो, कोई प्रोग्राम कल हो गया, कोई गेस्ट लेक्चर हो गया, तो अगर जैसे वीक में एक दिन उनको, बाकी दिन यूनिफॉर्म में आते हैं, एक दिन उनको सिविल के लिए अलाउ रहता है
जी।
वो वॉश कर लें 2 दिन के लिए, तो उनको ये बताना होता है कि कल ये प्रोग्राम है, आपको यूनिफॉर्म में ही आना है ऐसा। तो जो वो ग्रुप बना होता है ना, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे, फिर और भी इवेंट्स होते हैं या कहीं वैकेंसी निकली है या कुछ निकली, तो हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही उन्होंने टीसी ले लिया वहां से लेफ्ट हो जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब तक जुड़े हुए हैं 17-18 बैच के लिए।
ओके, और ये क्या आपको किसी तरीके का फीडबैक देते हैं कोर्स से रिलेटेड या प्रोग्राम से रिलेटेड?
हाँ, एक अभी हम लोग अभी तक रिटर्न में नहीं लेते थे, लेकिन अभी फीडबैक फॉर्म डेवलप किया है, जैसे अभी हमको नैक कराना है तो ये सारी चीजें कंपलसरी है, पेरेंट्स फीडबैक और स्टूडेंट्स फीडबैक, और स्टूडेंट्स का फीडबैक 2 है, कॉलेज के लिए और एक टीचर्स के लिए। तो अभी इस साल से हम उनको देंगे, जो रिटर्न होना है, जो कि उनका नाम ओपन नहीं होगा, मतलब प्राइवेसी उसकी रहेगी, जैसे आपने बताया अभी मेरे लिए, तो ऐसा हम लोग ताकि वो लोग फ्री होके लिख सकें। तो अभी ये जो बैच जाएगी 4th सेमेस्टर की, उनको हम अभी देंगे इस साल से।
अच्छा ओके ओके, तो सर पिछले 2 से 3 बैचेस में कितने बच्चों ने ये टीटी या सीटेट एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा?
ये जब तक बच्चे पढ़ते ना हम तब तक का मालूम रहता है, और पास होने के बाद उनको फॉलो अप अभी करते नहीं थे, जो बच्चे बताए उनको होगा, लेकिन इसमें से कम 60% बच्चे करते हैं, दिलाते हैं।
और कितने पास होते होंगे
ये
या एलिजिबल होते होंगे?
हाँ, इसका एक्चुअल रिकॉर्ड तो नहीं होगा, मैं आपको
लगभग भी बताएंगे तो भी चलेगा,
हो सकता है 10%, जैसे कि कुछ बच्चों का मालूम होता है कि मैं क्लियर किया है,
तो
10-15% क्लियर कर लेते होंगे।
अच्छा, तो सर आपकी आपका जो इंस्टीट्यूट है वो टीटी के सपोर्ट या प्रिपरेशन के लिए कोई मदद करता है बच्चों को?
नहीं, अभी तक नहीं करता है।
ओके ओके सर, और सर जैसे आपके अलावा भी वहाँ पे, आपके कॉलेज के अलावा भी कई कॉलेजेस होंगे जहाँ से बच्चे टीटी देते होंगे,
लगभग सारे कॉलेज के बच्चे देते होंगे क्योंकि इस लाइन पे उनको जाना प्रेफरेंस मिलता है टीटी वालों को प्राइवेट स्कूल्स में।
राइट, तो सर मतलब यहाँ से मतलब जैसे आप कह रहे कि आपके यहाँ पे 10-15% बच्चे एलिजिबल होते होंगे, कई कॉलेजेस में ये परसेंटेज थोड़ा हाई भी हो सकता है।
हाँ, ज्यादा होगा।
तो आपके हिसाब से आप इसका कारण क्या होता होगा?
वो उनको या तो जानकारी नहीं होगी, या बहुत सारे बच्चों का मैंने बताया पता नहीं चलता कि पास होने के बाद अगर क्लियर होंगे।
हाँ।
तो इसलिए मैंने जो परसेंट बताया वो गलत भी हो सकता है।
हाँ।
तो अगर इनको यहाँ कॉलेज में आते ही हम अगर उनको अवेयर कराएं, उसका इम्पोर्टेंस बताएं, तो मैक्सिमम बच्चे दिलाएंगे तो पास भी होंगे।
राइट सर, ये टीटी एग्जाम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एलिजिबल है या प्राइवेट के लिए भी?
प्राइवेट में मैम वो डेमो लेते हैं, बीएड है कि नहीं ये देखते हैं।
अच्छा, तो टीटी का मेजर फोकस गवर्नमेंट?
हाँ, मेरी समझ में गवर्नमेंट में ही अभी ज्यादा होता होगा।
राइट,
लेकिन ये है कि अगर किसी ने टीटी निकाला हुआ है तो प्राइवेट स्कूल वाले प्रेफरेंस देते होंगे अगर उसने उसको मेंशन किया बताया है तो। लेकिन ओवरऑल लोग तो पहले जो डेमो लेते हैं ना उस पर ही कंसंट्रेट करते हैं, और बीएड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं।
राइट राइट, तो सर ये बच्चे मतलब कहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं जैसे उनका 2 साल का बीएड और डीएलएड खत्म होता है? तो
ये जैसे यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं रायपुर और उसके आसपास के, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो कई लोग उस जॉब को छोड़ के आए होते हैं अगर बीएड करना है तो।
हाँ।
और कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आसपास के यहाँ रायपुर सिटी के स्कूल्स में है जो मिलते रहते हैं, जैसे कभी शहर में या किसी फंक्शन में मिल जाए।
हाँ।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जो यहाँ वाले हैं उसमें से मैक्सिमम।
तो ये प्राइवेट स्कूल में होता होगा?
हाँ, ये प्राइवेट स्कूल्स में है। वैसे ज्यादातर बच्चे ना अभी तो वैकेंसियां निकल नहीं रही है, जो यहाँ पे एक शिक्षा कर्मी करके निकलता था गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी 3-4 साल से पोस्ट निकली नहीं है। लास्ट ईयर हुआ था, मेरिट बेसिस पे हुआ था, अपनी एग्जाम भी हुआ था।
हाँ।
तो अभी उनको काउंसलिंग हो गई है उनकी, मतलब उनको पोस्टिंग अभी नहीं हुई है, वो लोग वेट कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में होना था। तो जो गांव गांव के और आस के पास के मतलब मैक्सिमम बच्चे हैं ना, वो उसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं शिक्षा करने के लिए। तो अभी उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई, जैसे 6 साल या 8 साल जब उनका जॉब हो जाता है तो उनको रेगुलर टीचर जैसा मिलने लगता है जो सैलरी है। तो यहाँ पे जो बीएड करने वाले मैक्सिमम बच्चों का इंटरेस्ट, खासकर जो गांव वाले हैं और जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको शिक्षा कर्मी ही होता है।
राइट राइट, लेकिन सर तो ये जब जॉब्स देखते हैं, तो जैसे आपने बोला एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप बताते हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में कोई प्लेसमेंट सेल या ऐसा कुछ है क्या, या और कोई तरीके होंगे जिससे इनको वैकेंसी का पता चलता होगा?
यहाँ पे अभी प्लेसमेंट सेल हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप में एक स्कूल है कोलंबिया ग्लोबल स्कूल, वो 2018 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर अभी सीबीएसई भी मिल गया है। तो वो एक एजेंसी है एम्पावर करके, कंसल्टेंसी ऐसे कुछ है, उनसे वो जुड़े हुए हैं। तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे मतलब उनके उनकी समझ में जिनको कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल का पहले का एक्सपीरियंस हो या जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, उनको उनकी प्रोफाइल को वो ले लेते हैं।
राइट,
या उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, फिर वो अपने हिसाब से वो उनका प्लेसमेंट करते होंगे।
अच्छा, ओके,
क्योंकि वो प्लेसमेंट एजेंसी, उनकी सर्विस हमारे स्कूल में लेते हैं टीचर्स के सिलेक्शन में।
अच्छा अच्छा,
लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल अभी कोई प्लेसमेंट सर्विस नहीं है।
ओके,
हमारे पर्टिकुलर हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग में है, फार्मेसी में है, इसी ग्रुप के।
तो सर हमने ये सुना है कि जो बीएड या डीएलएड, खैर डीएलएड के लिए ठीक है, लेकिन बीएड करके जो बच्चे निकलते हैं उनको भी लोअर ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, क्या ये सच है?
लोअर ग्रेड मतलब छोटी क्लास के लिए?
हाँ, छोटी क्लास।
तो प्राइमरी के लिए मैम डीएलएड क्वालिफिकेशन है।
हाँ, डीएलएड की नहीं, मैं बीएड की बात कर रही
हूँ। हाँ, बीएड में क्लास 6 से 12 के लिए होते हैं जो अपॉइंटमेंट होता है।
तो इनको उसी कैटेगरी में मिलता है पढ़ाने के लिए, राइट?
हाँ, जैसे मान लीजिए कोई पीजीटी टीचर के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नमेंट में, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो उनको 9th-10th भी दे देते हैं, और इसमें बाकी प्राइमरी में नहीं देते होंगे बीएड वालों को। हाँ,
अच्छा, ओके,
क्योंकि अभी तो जो एनआईओएस का हुआ था, जो गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल का डीएलएड कोर्स हुआ
हाँ
ओपन स्कूल की तरफ से, उसमें मैक्सिमम लोगों ने डीएलएड किया, तो
हाँ
वो उन्हीं के लिए था जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग टीचिंग जॉब करते हैं, जो स्कूल से अटैच नहीं थे उनके लिए उनको नहीं करने दिया गया, क्योंकि तो उनकी स्कूल से लेटर मंगाते थे कि कब से जॉब में, तो उनको उसमें वो लोग क्लास, वो ट्रेनिंग जो हुई थी उनकी क्लास 1 से 8 क्लास तक की थी, मतलब उसमें मिडिल स्कूल भी उन्होंने ऐड कर दिया।
ओके,
और वैसे हम लोग बीएड को 6 से 12 के लिए बोलते हैं,
राइट
लेकिन वो डीएलएड 8 तक के लिए था उनके लिए, जो मेंशन था वो लोग पढ़ा सकते हैं, वो एलिजिबल है उनकी डिग्री।
ओके, तो सर कितने प्रतिशत बच्चों को, मतलब कह रही है तो आई थिंक रेटोरिकल सवाल हो गया, कि कितने प्रतिशत बच्चों को एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब चाहिए है?
हाँ, इसमें तो मेरे को लगता है अगर 100 में से 70% बच्चे चाहते होंगे 60%
हाँ,
गवर्नमेंट जॉब मिल जाए,
और मिलता
जो
एक्चुअली कितने प्रतिशत बच्चों को होगा?
वो डिपेंड करता है जब कितनी वैकेंसी आई है,
हाँ
क्योंकि बहुत अभी तो 2-3 बैच के बच्चों को कोई जॉब ही नहीं लगा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी।
बराबर बराबर। तो लेकिन जब वैकेंसी अगर हमने कह दिया कि निकल गई है, सोचिए, तो
हाँ,
फिर अगर हमें परसेंटेज देना हो तो कितने बच्चों को मिलता होगा?
अब इसमें हम जैसे इसमें बीएड में तो मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास मतलब जैसे बीएड कोर्स में कितना परसेंट है देखते हैं गवर्नमेंट में,
ओके,
और हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का अलग अलग परसेंट देखते हैं,
हाँ
तो उन लोग ओवरऑल परसेंट देखते हैं जो कंसोलिडेटेड, तो मैक्सिमम बच्चों का तो प्रैक्टिकल इसमें बहुत मार्क्स है,
राइट,
600+ है,
ओके,
तो उनका फर्स्ट डिविजन रहता ही रहता है,
हाँ
तो मेरे ख्याल से कम 40-30% लोगों का सिलेक्शन हो ही जाता होगा,
ओके ओके,
बाकी उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंट पे डिपेंड करता है,
हाँ
अगर
हाँ
उसमें भी वो फर्स्ट क्लास है मेरिट में है तो उनका ओवरऑल सब क्राइटेरिया मिला के परसेंट बढ़ जाएगा। तो
राइट,
यहाँ पे कभी कभी शिक्षा कर्मी एंट्रेंस से भी हुआ है, और
ओके,
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के परसेंट का रेशियो कुछ बना देते हैं वो लोग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग भी हुआ है।
अच्छा,
हाँ,
ओके। तो सर आपके यहाँ पे जैसा आपने कहा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा कुछ एज सच नहीं है, लेकिन आपकी
जी
प्राइवेट स्कूल्स के साथ या गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ अफिलिएशंस है क्या, जहाँ पर आप बच्चों को भेजते हैं?
जॉब के लिए
जी,
नहीं मैम, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जैसे जो हमारे पुराने परिचित हैं या कोई रिलेशन में हैं,
हाँ
या जहां हम लोग टीचिंग के लिए भेजते हैं उनके कोई पहचान के हैं
हाँ
वो पूछते हैं, तो हम लोग उनको बता देते हैं, बच्चों के कांटेक्ट दे देते हैं, या फिर उनका जो ऐड होता है ना
हाँ
उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं,
यस,
लेकिन कैंपस में बुला के उनको इंटरेक्ट करा के सिलेक्शन कराना वो काम अभी तक तो नहीं कर पाए हैं,
अच्छा,
लेकिन अब
करना
इस नए के प्रोसीजर में वो सारा हमको करना है।
पड़ेगा। हाँ
हाँ, अब करना पड़ेगा।
तो सर ये बच्चे जब प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करते हैं, इनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती होगी?
सैलरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलता,
हाँ
जो फैक्ट है आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है
हाँ
आपको भी मालूम होगा, तो
हाँ
अब वो जैसा स्कूल का लेवल है, जैसे बहुत अच्छे बजट वाले स्कूल्स हैं
हाँ
जैसे डीपीएस है, एक एनएच गोयल है,
हाँ
और भी अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे रायपुर में, तो वो तो मिनिमम 15-18,000 देते होंगे जिनको जीरो एक्सपीरियंस है प्लस बीएड है, लेकिन
ओके, बराबर
मिनिमम उतना स्टार्टिंग देते होंगे और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ग्रेड बढ़ाते होंगे, लेकिन मिनिमम उतना वो लोग पे करते होंगे। और उड़ीसा के बच्चे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल होता है
हाँ
उड़ीसा बिहार के झारखंड के, तो
हाँ
वो बताते हैं उनको मिनिमम 20-24,000 मिलता है गवर्नमेंट
कौन?
स्कूल में, जैसे एडहॉक का निकला या कुछ निकला, तो
ये
ये 3-4 साल
गवर्नमेंट,
पुरानी बात बता रहा हूँ।
अच्छा, पर ये गवर्नमेंट स्कूल का बता रहे ना?
हाँ, गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे प्राय, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में
हाँ
जैसे 1 साल के लिए उनको रखा, या 10 महीने के लिए जहाँ तक रखते हैं, गर्मी छुट्टी माइनस कर देते हैं समर वेकेशन को,
हाँ
तो उनको उतना मिलता है।
अच्छा, और सर ये बच्चे एनजीओज में कहीं पे प्लेस होते हैं क्या जो एजुकेशन में काम करते हैं?
यहाँ एससीईआरटी में ही एक हमारे सर हैं,
हाँ,
जो एनजीओ से रिलेटेड, जो एससीईआरटी से लिंक्ड हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे काम लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो।
हाँ,
तो अभी 2 साल से वो ऐसे बच्चों को मानते हैं जो ग्रेड वाले हैं।
अच्छा,
उनका कुछ जो रिसर्च वर्क होता है उसके लिए।
हाँ,
बाकी ऐसा कुछ यहाँ के बच्चे नहीं जाते हैं कहीं।
ओके,
उस लायक उनके पास प्रोजेक्ट आता है ना तो वो ग्रुप में डालते हैं, तो हम लोग दे देते हैं।
अच्छा, ओके, तो सर आपके और आपके कलीग्स, तो आपके यहाँ पे कितने टोटल कलीग्स हैं सर बीएड और डीएलएड के?
यहाँ पे मैम अभी बीएड के लिए हमको 16 फैकल्टी चाहिए होता है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल।
ओके,
उसमें स्पोर्ट्स टीचर भी और म्यूजिक डांस वाले टीचर्स हैं, तो ये तो पार्ट टाइम होते हैं। और डीएलएड में हमारा 50 स्टूडेंट्स का एक यूनिट है, उसमें टोटल 8 होने चाहिए इंक्लूडिंग एचओडी प्रिंसिपल। तो टोटल हमारी रिक्वायरमेंट 24 की है, लेकिन अभी हमारे यहाँ एट प्रेजेंट 14-15 टीचर्स हैं, तो अभी और रिक्रूटमेंट उसमें करने का है।
तो
वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है वो प्रोसीजर, वो सेक्शन 28 का।
हाँ,
जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं वैकेंसी दिखा के, पेपर मेरिट देने के बाद जो फॉर्मेलिटी है।
हाँ, तो सर आप ये जो फैकल्टीज है बीएड और डीएलएड दोनों, आपको कोई क्या उसको कहते हैं चैलेंजेस फेस होते हैं क्या बच्चों को पढ़ाने के टाइम? मतलब अटेंडेंस का इशू हो गया, रेगुलरिटी का, या कॉम्पिटेंस का, या मोटिवेशन नहीं है, इस तरीके कोई चैलेंजेस आप फेस करते हैं बच्चों को पढ़ाने के?
हाँ, अभी 2 ईयर कोर्स में अटेंडेंस का प्रॉब्लम ज्यादा रहा है। वो हमको चाहिए 80% अटेंडेंस चाहिए रेगुलर थ्योरी क्लासेस में, और जितना इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें 90% चाहिए जो नॉर्म्स है एनसीटी का और रविशंकर यूनिवर्सिटी का। रविशंकर यूनिवर्सिटी 75% बोलती है, एनसीटी का 80-90% है। तो उनको हमको पीछे लगा रहना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ या तो जॉब में रहते होंगे या घर का कुछ काम करते होंगे, जो भी है वो प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन फिर उनको यूनिवर्सिटी का ही निर्देश है कि अगर 75 से कम हो तो कुछ असाइनमेंट वगैरह करवा लें, इसका प्रॉब्लम रहता है। टीचिंग के लिए हमको बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, उनको स्कूल दिलाओ उसके बाद वहाँ वो ठीक से काम करें बच्चे, तो ऐसे बहुत मतलब 30-40% बच्चे होंगे जो प्रॉब्लम करते हैं, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है या उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है।
अच्छा, और बाकी मतलब जैसे इंटरेस्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सब के लिए कोई दिक्कत होती होगी बच्चों में बढ़ाने के लिए?
हाँ, वो करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए बहुत नया कोर्स है ना।
हाँ,
और उनको मैं पहले बताया, उनको लगता है कि बीएड तो है जैसे दूसरा डिग्री कोर्स है, वैसे हमको सब तो आता है, हम टीचिंग भी किए हैं। जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जिसने कभी कोई जॉब नहीं किया, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती।
हाँ, हाँ।
वो जो बोलो करते जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं ना, उनको हैंडल करने में थोड़ा सा हमको मुशक्कत करनी पड़ती
है। तो सर आप मतलब आपके कलीग्स और आपके लिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी या अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो प्रोफेशनली, इसमें कोई दिक्कत आती है ये यूनिवर्सिटी में, आपके इंस्टीट्यूट में?
जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं,
हाँ,
उसमें ये दिक्कत आती है। अब क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको कॉलेज में मेहनत करना है, घर जाके भी नेक्स्ट डे की क्लास की प्रिपरेशन करनी है, प्लस हमारी प्रोफाइल को भी मेंटेन करना है, हमको सेमिनार में जाना है, वर्कशॉप में जाना है, उसके अलावा हमको प्रोजेक्ट्स लेने हैं, बुक राइटिंग करनी है, कॉलेज में भी हमको प्रोग्राम्स कराने हैं, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं जो इसके लिए अवेयर हैं अभी भी, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स यहाँ पे जो ट्रेंड देख रहा हूँ मैं कि पहले तो जो बीएड वाले बच्चों को एमएड करने के बाद उनका सेक्शन 28 में सिलेक्शन हो जाता था जो यूनिवर्सिटी करवाती है स्टेटस है, लेकिन अभी उसको एनसीटी ने नेट स्टेट पीएचडी कर दिया था 18 में। अभी कल परसों न्यूज आई है कि इस बार से वो अप्लाई होगी, जिसका नेट और पीएचडी दोनों होगा वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट होगा। तो पहले जो अभी तो अब क्वालिटी में थोड़ी सी सुधार आएगी,
हाँ.
लेकिन अभी ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है कॉलेजेस यहाँ पे ज्यादा है जो नेट स्लेट हो और पीएचडी भी हो. और इसके पहले या तो नेट हो या स्लेट हो या पीएचडी हो, ऐसा ऑप्शन था. तो पहले जो एमएड वालों का जो होता था, मतलब 16-15 तक, ये नॉर्म्स आने के पहले तक, ये शायद 18 में आया है, उसके पहले तक तो जो सिर्फ एमएड क्लास पास है वो हो जाता था. तो ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो मैरिड हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 11-12 में हैं, तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है. वो टीचर बन जाते थे, सिर्फ पढ़ाते हैं, अपनी प्रोफाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, प्रोफेशनली मतलब इस फील्ड पे नहीं थे. तो ऐसे लोगों की संख्या 70-80% है. लेकिन अब जो ये कंपल्सन हुआ है कि आपको नेट सेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, अभी अच्छे लोग मिलेंगे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है. तो अभी एमएड वाले तो मिल जाते हैं डीएलएड कोर्स के लिए, हमारे बहुत है.
हाँ.
लेकिन बीएड के लिए हमको अच्छे फैकल्टी नहीं मिलते.
तो और सर एनसीटी के रेगुलेशंस के हिसाब से आपको कोई दिक्कत होती है क्या कि वो उनके रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या दिक्कत आ रही है ऐसा कुछ?
हाँ, एक तो ये फैकल्टी सिलेक्शन में ही हो रहा है.
राइट.
हमको जो क्वालिफिकेशन उन्होंने
हाँ
कहा है उसमें मिलते ही नहीं है.
बराबर.
अगर हमारे पास एक कमेटी बनती है सिलेक्शन के लिए,
हाँ,
तो जैसे हमने एक पोस्ट दिया, वो बोलते हैं कि पीछे हमको तीन लोगों का बायोडाटा चाहिए, तीन कैंडिडेट होना चाहिए एक पोस्ट के पीछे. कभी कभी उतने भी नहीं आते, क्योंकि उस लायक ही नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है. या कोई अगर 5 साल से किसी कॉलेज में कर रहा है, क्वालिफाइड है, उसको सैलरी अच्छी मिल रही है, उनके घर के पास है, तो वो भी नहीं छोड़ते, वहीं कंटिन्यू रहना पसंद करते, नई जगह जाएंगे फिर से सेटल होंगे. तो जब उनको बहुत अच्छा डिफरेंस मिलता है सैलरी में, तब वो आएंगे. तो वो बात तो है नहीं, उतना डिफरेंस बहुत मिले, बहुत कम लोगों को वो चांस मिलता है.
हाँ.
मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक पे तो नहीं है.
ओके.
वो जब 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, अगर कहीं हेड की पोस्ट खाली है एचओडी की या प्रिंसिपल की, तभी हो पाएगा. फिर भी दूसरे कोर्सेज के तुलना में यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में सैलरी पैकेज बहुत कम होता है.
ओके. राइट.
तो और उसके अलावा जो ये इंटर्नशिप अभी जो 4 मंथ हो गया है ना, ये अटेंडेंस वाला, ड्यूरेशन वाला और फीस वाला 2 ईयर कोर्स का प्रॉब्लम है. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है इसमें, जो बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों को कोर्स को चलाने में होती है. क्योंकि किसी सेमेस्टर में सिर्फ 2 थ्योरी पेपर है, किसी में 3 है, किसी में 4 है. तो पहले जो 7 आवर्स की पढ़ाई होती थी, मतलब 7 आवर्स टीचर्स रहते थे,
हाँ,
4-5 आवर्स उनकी क्लासेस लगती थी, कम मिनिमम 5 आवर्स तो लगती थी बच्चों की क्लासेस. लेकिन अभी तो उनका जैसे 3 क्लासेस 3 पीरियड हुआ, फिर अब उनको क्या कराएं, क्योंकि इंटर्नशिप तो 2 ही कोर्स में है. तो हमको उनको एंगेज करना पड़ता है किसी न किसी चीज में, कभी लाइब्रेरी भेज के, तो कभी कोई टास्क दे के, कोई वर्क दे के.
तो सर ये टाइम टेबल तो शायद आपकी जो अफिलियटिंग बॉडी है वो बनाती होगी ना,
इसको सिलेबस ना.
हाँ, मतलब एनसीटी
हाँ, उन्होंने ही
नहीं आता होगा,
यूजीसी ने और एनसीटी ने फ्री कर दिया.
राइट राइट.
उन्होंने एक बेसिक कोर्स का जो डिजाइन है, थॉट है, वो दे दिया उन्होंने.
राइट.
सेमेस्टर बना सकते हैं, ईयरली भी बना सकते हैं. जैसे बिलासपुर में कॉलेज है, वो ईयरली चलाते हैं बीएड. गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है वो ईयरली है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सेमेस्टर है, तो यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर है. लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है घासीदास यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बिलासपुर का जो यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी नाम हो गया अभी, वो लोग नहीं है कोर्स चलाते हैं उसको, ईयरली कोर्स चलाते हैं, सेमेस्टर नहीं है उनके. तो ये हम लोग खुद डिजाइन कर सकते हैं. तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये डिजाइन किया. तो जो डिजाइन किया, तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था.
हाँ.
वो समर में इंटर्नशिप कर दिए थे, जबकि बच्चे उस समय छुट्टी पे रहते हैं.
छुट्टी पे. हाँ.
फिर बाद में सब बोले तो वो चेंज हुआ, तो ऐसा 2 साल तो उसमें ही टाइम लग गया. उसके बाद भी अभी 2-3 सब्जेक्ट्स को हटाया है या इलेक्टिव में डाल दिया जो कंपल्सरी था, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो अभी भी कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े. अभी नई तालीम एड हो गया है लास्ट ईयर से, लास्ट टू लास्ट ईयर से.
क्या हो गया सर?
नई तालीम जो बेसिक
हाँ, हाँ, हाँ,
था,
हाँ, हाँ,
था, वो अभी दो पेपर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में ऐड हो गया है।
ओ,
तो ये लगातार चेंज होने से भी डिस्टर्बेंस होता है।
हाँ, और सर मतलब ये जो 4 साल का अभी जो होने वाला है इवेंचुअली बीएड कोर्स, उसके लिए आपको, उसके लिए आपके क्या व्यूज है?
जैसा पहले मैं बताया कि ग्रेजुएशन में जो बच्चे आएंगे
हाँ,
वो बाय चॉइस आएंगे कि उनको बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है।
हाँ,
तो ट्वेल्थ में उनका जो सब्जेक्ट होगा कॉमर्स आर्ट्स या साइंस का, उस बेसिस पे वो लेंगे।
Right.
तो यहाँ पे अभी 3 कॉलेज में है छत्तीसगढ़ में,
अच्छा,
बीए बीएड और बीएससी बीएड, एक में दोनों है और 2 कॉलेज में एक एक है, एक आर्ट्स ग्रुप एक साइंस ग्रुप।
okay.
तो उनके यहाँ तो वो रिस्पांस अच्छा है।
okay.
क्योंकि डिग्री कोर्स है तो वो बच्चे सारे रेगुलर आते हैं और उनके डिग्री के साथ एक ही साल में उनको, मतलब एक साल उनका बच जाता है, बीएड का कोर्स भी हो जाता है
बराबर।
और अभी यहाँ पे वो 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं।
हाँ,
वो पूरे 4 साल एजुकेशन को पढ़ते हैं।
राइट राइट,
तो उनका बेस और अच्छा रहेगा।
राइट राइट, ओके। सर इसके अलावा आपको कोई लगता है इसमें कोई चैलेंज होगा 4 साल के कोर्स में?
इसमें अभी जो मुझको तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं है क्योंकि अभी वो कोर्स हमारे यहाँ नहीं है।
हाँ,
लेकिन जो एक संदीपनी कॉलेज है हमारे यहाँ पास में,
हाँ,
उधर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे जो कुछ फैकल्टी पहचानते हैं या और दूसरे फैकल्टी भी बताते हैं,
हाँ,
जांजगीर की तरफ कॉलेज है, इसमें जो जैसे बीएससी बीएड है ना, तो उसमें साइंस के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए नॉर्म्स है कि नेट होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, तो वो टीचर मिलते नहीं है क्योंकि साइंस और मैथ्स के और इंग्लिश के टीचर ऐसे ही मुश्किल से मिलते हैं जो एमएड किए हुए, उसके बाद उसमें नेट हो तो वो और बड़ा प्रॉब्लम है।
right.
तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा प्रॉपर लैब होना चाहिए अगर साइंस लैब है तो,
right. तो
इसके लिए एनसीटी या यूनिवर्सिटी जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी कि वहाँ रैंडम इंस्पेक्शन हो या सरप्राइज इंस्पेक्शन हो तो क्वालिटी नहीं सुधरेगा। जो पहला इंस्पेक्शन हो गया फिर वैसे ही चलता रहेगा।
right. तो सर आपके हिसाब से जो 1 या 2 साल, एक नहीं खैर अभी तो 2 साल का जो बीएड है ये कंटिन्यू होना चाहिए है या आपकी क्या, क्योंकि वो कॉम्पोजिट कोर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं तो उसकी उसमें आपकी क्या राय है?
जब हम लोग वहाँ गए थे मैम उस नेशनल डायलॉग में तो सभी का मत ये था कि इस कोर्स को बंद ना करें
2 साल के
लिए कोर्स को है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद हो रहा है।
हाँ,
ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जैसे जिस फील्ड के हैं उसमें उनको जॉब नहीं लग पा रही है या कोई ग्रेजुएशन के बाद अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है उसके लिए ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर कोई बीकॉम या बीसीए या बीएससी के बाद आना चाहेगा तो फिर ये कोर्स नहीं रहेगा,
बराबर
4 ईयर कंपोजिट कोर्स रहेगा तो फिर वो इसमें नहीं आ सकता। तो अब दोबारा तो ग्रेजुएशन करेगा नहीं,
करेगा
तो सभी ने ये सजेस्ट किया था, एक उन्होंने लास्ट में समरी बनाई थी, वो बोले थे कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को और एनसीटी को सबको हम वो ड्राफ्ट को भेजेंगे, भेजा भी होगा क्योंकि बीएचयू में हुआ था और रिनोम कॉलेज है 100 ईयर्स पुराना, उन्होंने भेजा होगा। तो उनको बोला गया था कि आप कंपोजिट, उस समय ऐसा हो रहा था ना कि कंपोजिट कोर्स लाएंगे 4 ईयर कोर्स और इसको ये बंद हो जाएगा। तो लगभग सारे उसमें बहुत सीनियर्स भी थे, रिटायर्ड वीसी भी थे उसमें, जो गेस्ट बन के आए थे, जैसे स्पीकर चीफ गेस्ट बन के आए थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि बंद नहीं होना चाहिए। चल हम लोगों का भी यही मत है कि बंद ना हो, ये भी चले वो भी चले।
तो सर आपको क्या लगता है कि अगर 4 साल का कोर्स हो गया तो टीचर्स की क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा?
हाँ, हम लोग को तो लगता है कि आएगा, उसका रीजन वही है, बेस बहुत अच्छा रहेगा लगातार वो 3 साल, और दूसरा 12th में डिसाइड कर रहा है ना।
हाँ,
तो ग्रेजुएशन कोई भी करता है अगर किसी फील्ड में उसको प्रोफेशनल फील्ड में जाना हो तो बहुत समझ के करता है।
राइट,
उसके लिए उसको सेलेक्ट होने के लिए बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है।
हाँ,
वो घूमते फिरते नहीं कर सकता क्लियर।
राइट,
जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे कोचिंग करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, तो वैसी तैयारी करनी पड़ेगी।
बस अभी और ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कोविड से रिलेटेड, क्योंकि पिछले 2 साल से सभी कोविड से जूझ रहे हैं, तो आपकी इंस्टीट्यूशन को मतलब फंक्शनिंग कैसे अफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, क्या चला है और क्या नहीं चला है?
अब इसमें 2-3 क्लासेस तो हुई हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अटेंडेंस भी हो जाता है, कुछ बच्चे कभी आते हैं, कभी दिन भर, जैसे कॉलेज आते तो पूरी दिन भर रहते थे, इसमें ऐसा नहीं होता, सुबह एक क्लास में आए, 2 क्लास में गायब हो गए, ऐसा भी होता है। अब उन पर हम कंट्रोल भी नहीं है। दूसरा जो हमको रिकवरी चाहिए थी फीस की, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। अब तो उसके कारण कॉलेज के फंक्शन में भी प्रॉब्लम हुआ, टीचर्स को एम्प्लॉयज को सैलरी देने में, क्योंकि रिकवरी हो नहीं रही है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि उनको मजबूर नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों को वाकई प्रॉब्लम है, जॉब छूट गई, सैलरी आधी मिल रही है, लोग बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनके पास है वो भी नहीं दे रहे थे, तो अब हमको तो ये नहीं मालूम कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन एक जो उनका उनके बारे में हमको मालूम है ना, जब कॉलेज आते थे क्या है उससे अंदाजा लगता है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ। दूसरा प्रैक्टिकल्स वाले जो पार्ट थे उसके लिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जैसे इंटर्नशिप हम लोग बीओ के परमिशन से आसपास के स्कूल्स में लगाते हैं, तो यहाँ पे ये दिक्कत हुआ कि हम लगाए कैसे। डीएलएड का एक सर्कुलेशन आया था, सर्कुलर आया था डीएलएड का कोर्स के लिए कि जो बच्चे जहाँ हैं अपने आसपास के स्कूल से परमिशन लेके करा लें, तो फिर मैंने उसको ही अप्लाई कर दिया।
अच्छा अच्छा,
बीएड के लिए भी तो बहुत अभी सेम सेमेस्टर में भी सेकंड में भी वही कर रहा हूँ, तो आसपास के कई कॉलेज वाले जैसे आपस में हम लोग बातचीत हुई, उन्होंने भी उसी सिस्टम को ले लिया है।
अच्छा अच्छा,
तो वो भी हो गया, लेकिन अब वो कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गांव का स्कूल है, तो वहाँ पे तो बच्चों का मोबाइल ही नहीं है, तो बच्चे बोलते हैं कि हम सर वहाँ तो खुद छोटे बच्चे हैं, तो कहाँ से, जैसे डीएलएड में बहुत प्रॉब्लम हुआ, गांव का प्राइमरी स्कूल है, बोले बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन। बीच में थोड़ा कोविड कम हुआ था तो वहाँ पे वो लोग मोहल्ला क्लास यहाँ पे लगा रहे थे, उसको मोहल्ला क्लास बोलते हैं, छोटा सा मतलब स्कूल में ना पढ़ा के जितने बच्चे आ जाए, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जैसा नहीं था, फॉर्मल था, बच्चे आए दूर दूर बैठे आंगन में पेड़ के नीचे कहीं खुली जगह पे और ऐसा पढ़ा लें, या उनके घर के आसपास ज्यादा बच्चे जा रहे थे वहाँ जाते, इस टाइप का पढ़ाई हुआ था, तो वहाँ जाके पढ़ा दिए। फिर प्रैक्टिकल हमको लेना था फाइनल ईयर का, उसमें हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है, दूसरे कॉलेज से यूनिवर्सिटी असाइन करती है किसी एक्सपर्ट को, वो आके वायवा लेते हैं, तो वो हमको ऑनलाइन करना पड़ा, कुछ की कॉपी आ पाई, कुछ की प्रैक्टिकल कॉपी आ नहीं पाई, उसने इंटेंशनली नहीं भेजा, लेकिन इंटरव्यू में अपियर हो गया और मेल कर दिया कि हाँ इस समय तक सबमिट कर देंगे, तो उनको हमको अलाउ करना पड़ा, पास भी करना पड़ा, जो इंटरनल मार्क्स हमारे होते हैं। बाकी जो थ्योरी पेपर उनका है वो तो यूनिवर्सिटी ने सब अरेंज कर दिया था, तो वो हो गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं आया। तो कुछ प्रैक्टिकल्स में इंटर्नशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए थे, और जो हमारा जो फीस रिकवरी का है उसमें प्रॉब्लम आया था।
तो सर ओवरऑल कोविड ने कैसे अफेक्ट किया है आपके प्रोग्राम्स को?
अब इसमें मैम ये समझ में नहीं आया कि बच्चे को जितना परसेंट मिला है 80-85% जो ऐसे हर बच्चे का नहीं आता, कि वो उस लायक है भी कि नहीं, क्योंकि उसको ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर मिल रहा है ग्रुप में, अब उसको 5 दिन के अंदर वो लिख के देगा, मतलब लास्ट पेपर है, मान लो 3 थ्योरी पेपर है, तो लास्ट पेपर के बाद 5वें दिन तक वो लिख के पोस्ट करेगा, तो उसको तो बुक से ही लिखना है।
राइट,
लेकिन अब वो भी खैर हमारे एग्जाम सेंटर में ही है, दूसरी जगह हमारी कॉपी जाती है, तो अब वो क्वालिटेटिव था, उनको इफेक्ट इम्पैक्ट आया कि नहीं वो मुश्किल है समझ पाना।
तो क्वालिटी में बहुत ज्यादा इशू आया
ही होगा, वायवा भी ऐसी हो रहा है, इंटर्नशिप में बच्चे परमिशन ले लिए कर रहे हैं जा रहे हैं कि नहीं, अभी स्कूल भी तो बंद थे।
राइट,
तो ऑनलाइन में से क्लास ही लिए, वहाँ का एक्सपीरियंस तो उनको मिला नहीं स्कूल का, जो फिजिकली जाने से मिलता है।
ओके सर, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच सर।